हरे कृष्णा। आज का विषय है गुरुओं की दुनिया। महाराज यदु अपने भ्रमण के दौरान एक युवा अवधूत वैरागी से मिले। अवधूत ब्राह्मण का ना तो कोई घर था और ना ही कोई संपत्ति। यदु ने ध्यान से देखा कि सब कुछ त्याग देने पर भी वे अवधूत प्रसन्न एवं सुखी थे। उत्सुक होकर यदु ने उनसे पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? अवधूत ने इस प्रश्न के उत्तर में उन 24 गुरुओं का वर्णन किया जिनसे उन्होंने शिक्षाएं ली थी। चंद्रमा। पंचभूत तत्वों के बाद अवधूत का अगला गुरु बना चंद्रमा। प्रतिदिन चंद्रमा अपनी विभिन्न कलाओं से गुजरता है, परंतु उसका घटना और बढ़ना केवल दिखाई देता है, वास्तव में वैसा होता नहीं। प्रत्येक अवस्था में चांद पूर्ण ही होता है। इसी प्रकार आत्मा है, विभिन्न शरीरों में निवास करते हुए प्रतीत होता है कि आत्मा बदल रही है, परंतु वास्तव में वह सदैव अपरिवर्तित रही आती है। सूर्य अपनी शक्तिशाली किरणों से अताजल को सोखता है और समय आने पर वर्षा के रूप में पुनः जल पृथ्वी को लौटा देता है। सूर्य हमें वैराग्य की शिक्षा देता है। हमें अकारण धन संपत्ति का संचय नहीं करना चाहिए, अपितु उसका प्रयोग कृष्ण भावना के प्रचार्थ करना चाहिए। सूर्य से एक अन्य शिक्षा यह मिलती है कि यद्यपि विभिन्न वस्तुओं में प्रतिबिंब सूर्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। इसी प्रकार विभिन्न शरीरों में रहते हुए भी आत्मा उनसे अप्रभावित रहती है। इसके पश्चात अवधूत अपने 8वें गुरु का वर्णन करते हैं। वह है एक कबूतर। यह कबूतर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक एक वृक्ष पर बने घोंसले में रह रहा था। पति पत्नी के हृदय पूरी तरह एक दूसरे में आसक्त थे। सामान्य दंपतियों के समान वे भी मानते थे कि उनका जीवन सदा सदा के लिए ऐसा ही सुखी रहेगा। कुछ समय में कबूतरी गर्भवती हुई और उनके घोंसले में नन्हे मुन्ने बच्चे खेलने लगे। उनकी तोतली चहचहाट सुनकर पति पत्नी दोनों का प्रेम उनके प्रति उमड़ने लगता। पूरा परिवार सुख से रहने लगा। एक दिन वे दोनों अपने बच्चों के लिए दाना चुगने जंगल में गए। उनकी अनुपस्थिति में शिकारी ने अपना जाल बिछाकर उनके बच्चों को पकड़ लिया। जैसे ही कबूतर लौटी और अपने बच्चों को जाल में फंसा देखा, व्यतीत हो वह उनकी ओर दौड़ पड़ी। हर बड़ाहट में समझ नहीं पाई कि वह स्वयं उस जाल की शिकार बन जाएगी। अपने बच्चों एवं पत्नी की इस दुर्दशा को देखकर कबूतर अत्यधिक शोक करते हुए रोने लगा। तीव्र वेदना मानो उसके शरीर में प्राणों को बाहर खींच रही थी। उसने जीवित रहने की सारी आशा छोड़ दी। अपने परिवार को जाल में संघर्ष करते देख वह बेसुध होकर गिर पड़ा और स्वयं शिकारी के जाल में जा फंसा। इस कथा की शिक्षा देते हुए अवधूत ने कहा कि अत्यधिक भौतिक आसक्ति हमें भ्रम और कष्टों की ओर ले जाती है। इस संसार में जीवन संकटों से भरा है और हमने जो कुछ भी एकत्र किया है वह हमारे पास से चला जाएगा, क्योंकि इस संसार की प्रत्येक वस्तु सीमित एवं अस्थाई है। आध्यात्मिक पद पर अग्रसर साधक को सदैव इस विषय में सचेत रहना चाहिए। नवा गुरु था अजगर, जो बिना भोजन के लंबे समय तक एक स्थान पर लेटा रहता है। वह अन्य पशुओं के समान जंगल में शिकार की खोज नहीं करता, अपितु स्वयं शिकार के अपने दायरे के भीतर आने की प्रतीक्षा करता है। और यदि कई दिनों तक भी कोई शिकारी नहीं आता तो वह भूख को सहन कर लेता है। अवधूत ने कहा कि इसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अविचलित भाव से सहन करना चाहिए और अपने मन एवं चित्त को भगवान पर केंद्रित करना चाहिए। समुद्र हमें सिखाता है कि हमें अपने मन में निरंतर उठने वाले विचारों और इच्छाओं से अद्विग्न नहीं होना चाहिए। वर्षा ऋतु में अनेकानेक नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं परंतु समुद्र अपने तट से बाहर नहीं आता और न ही ग्रीष्म ऋतु में वह सूखकर अपनी सीमा से अंदर चला जाता है। समुद्र के ही समान आत्मज्ञानी साधु को प्रत्येक परिस्थिति में संभाव रहना चाहिए। अवधूत ने देखा कि जिस प्रकार एक पतंगा अग्नि की ज्वालामान लपटों से आकर्षित होकर उसमें जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं अपने विनाश एवं पतन को आमंत्रण देता है। मधुमक्खी कमल के फूल पर जाती है और उसमें से पराग ले आती है, परंतु यदि वह लोभी बनकर फूल पर ही बैठी रहे तो संध्या समय कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाएगी और मधुमक्खी उसमें फंसकर मर जाएगी। संसारिक जीवन हमें एक पाठ सिखाता है, इंद्रिय भोग नमक के समान है। भोजन में थोड़ा कम या थोड़ा अधिक नमक, ये दोनों भोजन का स्वाद किरकिरा कर देते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उतनी वस्तुएं ही स्वीकार करे जितनी उसके पोषण के लिए आवश्यक है और शेष समय वह आत्म साक्षात्कार में लगाए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके इस संसार में बनने की संभावनाएं बनी रहती हैं। नर हाथी स्वयं अपनी इच्छाओं से पराजित हो जाता है। भारत में हाथी को पकड़ने के लिए हथिनियों का प्रयोग होता है जो उसे प्रलोभित करके एक गहरे गड्ढे में ले जाती है। इससे शिक्षा मिलती है कि स्त्री के आकर्षण में फंसकर बैरागी व्यक्ति सांसारिक जीवन के गहरे गड्ढे में जा गिरता है। शहद एकत्र करने वाला, यदि भी मधुमक्खी शहद एकत्र करने के लिए कठोर श्रम करती है, उस शहद का भोग कोई और करता है। इससे शिक्षा मिलती है कि इस धन संपत्ति को गृहस्थ लोग कठोर श्रम से अर्जित करते हैं, उसका भोग बैरागी लोग करते हैं। हिरण, कई बार शिकारी मधुर बांसुरी अथवा अन्य वाद्य यंत्र बजाकर हिरण को आकर्षित करता है और उसे मार देता है। इससे शिक्षा लेकर आध्यात्मिक पथ के साधक को सांसारिक गीत गानों तथा अनर्थक बातों से बचना चाहिए। यह कार्य उसे लक्ष्य से भटकाकर आध्यात्मिक मृत्यु की ओर ले जाएगी। मछली, मछली को कांटे में लगा भोजन दिखाई देता है परंतु कांटा नहीं। अवधूत ने महाराज यदु को बताया कि सारी इंद्रियों में जीव को नियंत्रित करना सर्वाधिक कठिन है। अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति भी जीव के प्रलोभनों में फंस जाता है। इसलिए वैष्णव ग्रंथों में जीव को नियंत्रित करने के लिए भगवान के नामों के कीर्तन एवं भगवान को भोग लगाकर भोजन करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति मछली को प्राप्त होने वाली गति से बच सकता है। इसके पश्चात अवधूत की 17वीं गुरु पिंगला की कथा है। भगवान के इन 24 गुरुओं में पिंगला का विशेष स्थान है। वह केवल अपने उदाहरण से ही नहीं अपितु अपने वचनों से शिक्षा देती है। पिंगला प्राचीन वैदेही नगरी में रहती थी और प्रति रात्रि अपने घर के बाहर खड़े होकर आने जाने वालों पुरुषों को देखा करती। प्रत्येक पुरुष को देखकर वह यही विचार करती थी कि उस रात कौन उसका ग्राहक बनेगा। उसका मन यही सोचा करता, क्या इस व्यक्ति के पास धन है? यह व्यक्ति बहुत धनी लगता है, परंतु क्या वह मुझे धन देगा? एक समय पूरी रात बीत गई, परंतु उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। निराश और दुखी होकर वह विचार करने लगी, मैं अपना खर्च कैसे वहन करूंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी युवा अवस्था बीत रही है? यदि मुझे बिना किसी ग्राहक के कुछ और दिन बिताने पड़े तो मेरा क्या होगा? अचानक उसने पाया कि चिंता और निराशा से भरे उसके मन में संतोष का बीज पनप उठा। उसने अपने भीतर वैराग्य, स्वतंत्रता तथा सुख का अनुभव किया। अंततः वह एक गीत गाने लगी। श्रीमद् भागवता में लिपिबद्ध यह गीत वैश्य वृत्ति संभोग इच्छा तथा भोग विलासी जीवन की मूर्खता को उजागर करता है। इस गीत में उसने सांसारिक सुखों के क्षणभंगुर स्वभाव का वर्णन किया। इस प्रकार अपने अंतकरण में वैराग्य को जगह देकर उसने इसे भगवान की कृपा रूप में स्वीकार किया और अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। इसके बाद अवधूत ने क्रूर अथवा बाज की कथा सुनाई। एक दिन बाज पक्षियों का एक झुंड भोजन की खोज में भटक रहा था। उनमें से एक छोटे बाज के हाथों एक चूहा लग गया। जैसे ही दूसरे बाजों ने यह देखा कि उसके पंजों से शिकार छीनने के लिए उसके ऊपर झपट पड़े, छोटे बाज ने बिना समय गवाए उस चूहे को फेंक दिया और इस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा की। यदि भी वह अपना भोजन खो बैठा, फिर भी उसने अपने अंतकरण में अपूर्व शांति का अनुभव किया। अवधूत ने कहा, भौतिक वस्तुओं का संग्रह कष्टों को जन्म देता है। इस सिद्धांत को समझने वाला व्यक्ति अकिंचन बन जाता है, अर्थात उसे पूरा साक्षात्कार हो जाता है कि वास्तव में उसका कुछ भी नहीं है, प्रत्येक वस्तु एकमात्र भगवान की है। अवधूत ने कहा कि वे एक बालक के समान बिना किसी पत्नी, घर, बच्चों आदि की चिंता किए निश्चिंत धरती पर भ्रमण करते हैं। फलस्वरूप वे आत्मा के स्तर पर जीवन जीते हुए दिव्य प्रेम का अनुभव कर रहे थे। विवाह योग्य कन्या, एक कन्या ने अवधूत के लिए गुरु की भूमिका निभाई। एक दिन जब वह घर में अकेली थी, विवाह का प्रस्ताव लेकर कुछ लोग उसके घर आए। चूंकि उस समय घर पर अन्य कोई नहीं था, उस कन्या को ही उनका आदर सत्कार करना पड़ा। उन्हें भीतर बैठा कर वह उनके खान पान की व्यवस्था करने के लिए रसोई बनाने में जुट गए। पाक के दौरान बर्तनों को यहाँ वहाँ करते समय उसकी कलाई में पड़े कंगन जोर जोर से खनक रहे थे। इस आवाज को सुनकर कहीं अतिथियों को यह न लगे कि इसके घर में काम करने के लिए कोई दास दासी नहीं है। क्या विचार करके उस कन्या ने दोनों हाथों में दो दो चूड़ियां छोड़कर शेष उतार दी, परंतु सब्जी काटते समय वे दो चूड़ियां भी तीखी आवाज करने लगी। तब उसने दोनों हाथों से एक एक चूड़ी और निकाल दी। अब दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी बची थी। अवधूत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अकेले रहना सबसे अच्छा है। दूसरों के साथ रहने से व्यक्ति आध्यात्मिक पथ से भ्रमित हो सकता है। यहाँ तक कि केवल एक व्यक्ति भी हमारे जीवन को विचलित कर सकता है। आध्यात्मिक पथ के गंभीर पथिकों को चाहिए कि वे इस मार्ग पर अकेले चले, अथवा उन लोगों के साथ चले जिनका लक्ष्य भी उन्हीं के समान है। एक बार अवधूत ने बाण बनाने वाले एक कारीगर को देखा। वह बाणों को धार लगाने में इतना तल्लीन था कि उसने अपनी दुकान के सामने से गाजे बाजे के साथ जा रहे राजा के जुलूस की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। वह उस ओर तब तो देखता जब उसे पता चलता कि कुछ हो रहा है। उसका ध्यान पूरी तरह अपने कार्य में लगा था। अवधूत ने कहा कि इसी प्रकार योगी को भी चाहिए कि वह स्वयं को परमात्मा में लीन रखकर अपने आसपास होने वाले कार्यों पर ध्यान न दे। सांप यहाँ पुनः अकेले रहने अथवा अन्य किसी पर निर्भर न रहने का उदाहरण है। अवधूत ने कहा कि सांप किसी एक घर या बिल से आसक्त नहीं रहता। वह जहाँ देखता है वहाँ रह लेता है और बिना कोई विचार किए उस स्थान को छोड़ देता है। साधक को चाहिए कि वह विरक्ति की इसी भावना के साथ अपना जीवन व्यापन करे। मकड़ी अपने शरीर से धागा निकालकर जटिल जाल बनाती है और कार्य समाप्त होने पर उसे अपने भीतर समेट लेती है। इसी प्रकार परमेश्वर स्वयं इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और इसका उद्देश्य समाप्त होने पर इसे पुनः अपने भीतर समेट लेते हैं। यह तेईसवां गुरु हमें इस संसार में कुछ सिखाने के स्थान पर परमेश्वर के स्वभाव की शिक्षा देता है, परंतु मकड़ी हमें विरक्ति की शिक्षा भी देती है। एक बार एक तोते ने अपने बिल में एक कीड़े को कैद कर लिया। अत्यधिक भयभीत होने के कारण वह कीड़ा निरंतर उस तोते का ध्यान करने लगे और इस प्रकार उसे अगले जीवन में तोते का शरीर प्राप्त हुआ। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम जिस वस्तु का चिंतन करेंगे, हमें अगला जीवन उसी के आधार पर प्राप्त होगा।
हरे कृष्णा। अगर आप चाहते हैं ऐसे धार्मिक मैसेजेस हर दिन आपको प्राप्त होते रहे, तो अपने नाम और शहर के साथ 9987949494 9987949494 स्कॉन डिजायर ट्री के नंबर पे मैसेज करें। धन्यवाद।